اب اگلے حصے میں مضمون بدلتا ہے. آسان ہے لیکن اصل میں رول ماڈلز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حکم دیا جا رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. واہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت جہاں کیوں آ گئی؟ پہلے یہ بتائیے کہ اس سے ملتی ہوئی آیت کہیں پیچھے گزری ہے؟ سورۃ توبہ میں. اب ساری زندگی اللہ نے منافقوں سے تو کوئی جنگ نہیں کی, کافروں سے ہی ہوئی نا, یہود سے ہوئی. تو یہاں پھر منافقوں کے ساتھ جہاد سے کیا مراد ہے؟ سوال سمجھے کہ منافقوں کے ساتھ کیسا جہاد ہوگا؟ تو سورۃ توبہ میں اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہوا تھا نا, وہ تلوار کے ساتھ ہوا تھا, تلواریں اٹھی تھیں ان کے خلاف. منافقوں کے ساتھ جہاد جو ہوگا نا, یہ تعلقات کی حدیں مقرر کر کے اور اخلاقی جہاد ہوگا. ان کو احساس دلاؤ, فیل کراؤ کہ تم غلط کام کر رہے ہو. اب آگے آیت نمبر 10 میں چار رول ماڈلز ہیں. آخر صورت تک ہم چاروں کو پڑھ کے پھر اکٹھی بات کر لیں گے اس پہ. درب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط. درب اللہ, بیان کی اللہ نے مثلا, ایک مثال کس کے لیے؟ للذین کفروا, کافروں کے معاملے میں. یعنی کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے دو مثالیں پیش کی. پہلی مثال امرأت نوح, بیوی نوح کی. پیچھے سن چکے ہیں نا, کیا جرم تھا اس کا؟ شرک. یعنی اس کی ہمدردی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھی. اور وامرأت لوط, اور لوط کی بیوی, ان کا کیا جرم تھا؟ اپنے خاندان برادری کو پریفر کیا شوہر پر. غیر خاندان سے تھی نا, تو شوہر کے مشن میں شامل نہیں ہوئی. کیا حال ہے ان دو عورتوں کا, ان خواتین کا کیا معاملہ ہے؟ کانتا, تا کے آگے الف کس چیز کی ہے؟ ڈیول کی ہے. دو ہیں, کانتان تھا اصل میں, کانتات تھا, مطلب کانتا جو ہے یہ دونوں تھی. تحت عبدین, ہمارے دو بندوں کے زیر تحت. عبدین سے یہاں کون مراد ہے؟ حضرت نوح اور حضرت لوط. من عبادنا الصالحین, اب یہاں جب آپ پڑھیں تو ہین نہ پڑھ دیں, ہا حین, یہ ہمارے دو نیک بندوں میں سے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو نبی تھے, تو یہاں صالحین کہا گیا, یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ ہمارے نبیوں کی بیویاں تھیں؟ تو صالحیت کے درجے سے گزر کی نبوت ملتی ہے, نیک بندے تھے. اور چونکہ بیویوں سے ٹیلی کیا جا رہا ہے تو نبوت کا لفظ نہیں آیا, کیونکہ بیویاں تو نبی نہیں بن سکتی تھی. تو ان کا مقام دکھایا جا رہا ہے ادھر کہ بہر تو بڑے نیک تھے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما, پھر ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں سے. لفظ سمجھ رہے؟ دونوں بیویوں نے دونوں شوہروں سے خیانت کی. کیا تھی اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. فلم یغنیا انہما, پھر ہرگز نہ ان کو کام آیا, من اللہ ہی, اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی, شیئن تھوڑا سا بھی. وقیل ادخلا, پھر کہا گیا داخل ہو جاؤ, النار, آگ میں, مد داخلین, داخل ہونے والوں کے ساتھ. کیا بات سمجھ آئی؟ کہ جب بندے کا عمل پیچھے چھوڑ دے تو حسب کام نہیں آتا. جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑا ان کو نبی کی بیوی ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا. خیانت کیا تھی؟ بدکار نہیں تھی, دین کی خیانت تھی, دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھی, مشن کی ساتھی نہیں تھی, بس یہ کہہ لیجئے. آج بھی ایسے نماز روزے تک نیک ہیں لیکن مشن کے ساتھی نہیں ہیں, شوہروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی وہ عورتیں. اللہ نے دونوں کو آگ میں ڈال دیا, کتنی بری مثال بیان ہو گئی. اس کے برعکس وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, اور بیان کی اللہ نے مثال ایمان والوں کے لیے, کس کی؟ امرأت فرعون, فرعون کی بیوی. اس قالت, جب اس نے کہا, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے رب بنا لے میرے لیے اپنے پاس ہی گھر جنت میں. پہلا اس کا مطالبہ یا اس کی ریکویسٹ. دوسرا, ونجنی من فرعون وعملہ, اور نجات دے مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے. ایک ترجمہ, دوسرا بھی نوٹ کر لیں. ونجنی من فرعون وعملہ, اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عملے سے. یہ دونوں ترجمے اس کے موجود ہیں. تیسرا مطالبہ, ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے. یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ حضرت آسیہ. روایت میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے معجزہ پیش کیا اور فرعون نے شہر سے لوگ بلا لیے تھے कि आज जरा वो अपनी आंखों से देख लें तो मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा समझ लें। अल्लाह ने उस अमल के नतीजे में बीबी आसिया को ईमान दे दिया। फिरौन जो चीज दूसरे घरों में नहीं जाने दे पा रहा था, अपने घर को उससे नहीं बचा सका, फिरौन की बीवी मुसलमान हो जाए, या ऐसी जैसे आज कोई सुपर पावर है और उसके सदर या वजीर की बीवी मुसलमान हो जाए, कोहराम भी मचेगा और अना पे चोट भी पड़ेगी। यही कुछ उधर भी हुआ। नतीजा क्या निकला कि फिरौन को तकलीफ हुई। रिवायत में आता है कि उसने बीबी आसिया को कैद में डलवा दिया और मजबूर किया कि इस्लाम छोड़ दो, टॉर्चर किए। चाहता नहीं था मारना, प्यार करता था, कोई घर का पहला झगड़ा नहीं था, लेकिन ईगो इशू था कि मेरी बीवी मूसा के खुदा को मानने लग गई। कैद करवा दिया और जो कुछ भी कर सकता था किया, लेकिन बीबी आसिया ने हार ना मानी। हत्ता के फिरौन ने फिर अपनी आदत के मुताबिक जो कुछ भी वो करता था, इनको भी सूली पे चढ़ाने का फैसला किया। और उस तख्ते दार पे खड़े होकर हजरत आसिया ने ये दुआ मांगी थी कि रब्बिफ़नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, कि अल्लाह मेरा घर अपने पास ही जन्नत में बना ले। और रिवायात में हमें मिलता है कि बीबी आसिया की जान निकलने से पहले अल्लाह ताला ने आसमानों में उनको जन्नत का घर दिखा दिया था। बहुत बड़ा सबक है इसमें हर उस औरत के लिए जिसका ख्याल जाए कि उसका शौहर उसको दीन पे अमल नहीं करने देता। सारी दुनिया के शौहरों की दौलत मिल जाए तो फिरौन की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती, और सारी दुनिया के शौहरों का जुल्म मिल जाए तो फिरौन के जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उस औरत को जब हक समझ आ गया तो फिर वो नहीं डरी। तो मैं और आप किस बात की बात करते हैं? वो कहते हैं ना, जो हो जौक के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। रिवायत में आता है कि उनको चारों तरफ से, यानी हाथों को कीलों के जरिए दीवार में लटका के या जमीन पर रख के सीने पे भारी पत्थर रख देता और लोगों को कहता कि इनको, यानी इस पत्थरों से दबाओ। इस हालत में उन्होंने ये दुआ की थी और अल्लाह ने उनको कबूल किया। कितनी बड़ी शान है। यहाँ तक आता रिवायात में कि जन्नत में इनको अल्लाह के नबी की ज़ौजियत में दिया जाएगा, वल्लाहु आलम, लेकिन रिवायतें मौजूद हैं। देखिए एक जुमला सुन लें, जितनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में उतना बड़ा अजर। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? मैं और आप तो अल्लाह की कुदरतों का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, यही इम्तिहान है। बाज़ औरतों की जन्नत उनकी मजबूरियों में छुपी होती है, और मैं कहूँ और अगर आप बुरा ना माने प्लीज़, बाज़ औरतें इतनी मजबूर होती कोई नहीं है जितनी समझती हैं दीन के मामले में। हर मामले में वो हक लेने को आगे निकलती हैं, जहाँ दीन की बात होगी तो गिविंग अप स्टाइल। जब आप खुद ही हारे हुए हैं तो अगला कैसे माने? क्या कोई आपकी जन्नत आपसे ले सकता है? बीबी आसिया की जन्नत कोई ले सका तो आपकी मेरी कैसे ले सकता है? छोड़ दिया ना फिरौन को। मसला हमारा ये होता है, हम वो चीज़ें भी नहीं छोड़ पाते ना। तो अपने अंदर इतना यकीन पैदा करें, अल्लाह से वो ताल्लुक़ पैदा करें कि जिसके नतीजे में मदद आती है। अल्लाह के पास घर से क्या मुराद है? हदीस में आता है कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श है। तो ऐसे लगता है कि बीबी आसिया जो हैं ये जन्नतुल फिरदौस में जाएंगी। क्या बीबी आसिया ने नुकसान का सौदा किया? कम समझ थी? नहीं, कम समझ नहीं थी, अक्लमंद थी। फिरौन की ज़ौजियत में रहती हो सकता है फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ईमान चला जाता, रंग में रंग डल ही जाता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उनको अपने ईमान की फिक्र थी, ईमान बचा लिया, घर तोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई बीवी को मुसलमान होने पर इस तरह मारे, इल्ला माशाल्लाह। आज भी अंदर खाते कुछ ऐसे लोग होंगे जब मुसलमान हों तो उनको लोग तकलीफें दें, लेकिन आटे में नमक के बराबर। और छोड़ें, वो तो मुसलमान होते हैं तो तकलीफें सहते हैं, हम तो रिवायती मुसलमान से शौरी मुसलमान होते हैं इस कुरान को पढ़कर, और हमारा ख्याल है कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ लग जाती हैं। अगर आपने सूरत तहरीम के इब्तदाई हिस्से पे अमल कर लिया ना, जो भी बातें आज हुई या कभी आपने पहले सुनी शौहर बीवी के ताल्लुक में, तो इतनी सख्ती नहीं आती। ये हमारा मिजाज है जो हर चीज़ को महसूस कर लेता है, सीरियस ले लेते हैं, माथे पे पट्टी बांध लेते हैं। आप रिलैक्स रहें और साफ कह दें, मेरे दीन के मामले में आप नहीं बोले, मैं आपको कुछ नहीं कह रही तो आप नहीं बोलेंगे। कोई इतना खुदा छोड़ा हुआ नहीं होता कि हमारे और हमारी जन्नत के बीच में आ जाए। और हमारे और रब के बीच में अगर कोई आता है तो बीबी आसिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। आप कह सकते हैं कि शादीशुदा औरतों के लिए हजरत आसिया एक रोल मॉडल है। अब अगली आयत में अनमैरिड कुंवारी बच्चियों के लिए हजरत मरियम की कहानी है कि किस तरह एक लड़की के लिए इज्जत ही तो कीमती चीज़ है और अल्लाह ने हजरत मरियम की आजमाइश इज्जत की आजमाइश बना दी। किसी को देखिए ना, नबियों को आजमाया, कहीं आग में डाले गए, कई लोगों ने मारा, जंगें की, लेकिन हर एक की आजमाइश फर्क है। हजरत आसिया की आजमाइश, अगर घर टूटा तो बीवी मरियम की आजमाइश क्या है? इज्जत पे हाथ पड़ा। गोया कि अल्लाह ताला हर बंदे से कुछ ना कुछ काम लेता है। कुर्बानी के बगैर तो पता भी नहीं चलता ना कौन आपका खालिस बंदा है। आप जब तक किसी को आजमा नहीं लेते हैं, आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं। व मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और मरियम जो इमरान की बेटी थी, कितना खूबसूरत अंदाज है बाप के नाम से। और यही फितरी तरीका है, औरत अपने बाप के नाम से पुकारी जाए। शौहर के नाम से वक्ती पहचान है, लेकिन बाप के नाम से। कौन थी? अल्लती अहसनत फरजहा, जिसने हिफाजत की अपनी फरज की। अहसनत का लफ्ज हसन से है, हा स्वाद नून। पांचवे पारे का पहला लफ्ज वल मुहसनात, किला, किला बंद, हिफाजत के मानों में। फरजहा फरज सुराख को कहते हैं, प्राइवेट पार्ट को कहते हैं। उसने अपनी इज्जत की हिफाजत की, यानी करप्ट नहीं थी। फनफख ना फी ही में रूही ना, फिर हमने फूक दी उसमें अपनी रूह में से। इशारा है हजरत ईसा की प्रेगनेंसी की तरफ। फरिश्ते ने आके ब्लो किया था और उनके रहम में हमल ठहर गया। वसद्दकत बी कलिमाती रब्बीहा, और वो तस्दीक की, यानी उसने तस्दीक की अपने रब के अहकाम की, यानी जो रब उसको कहता गया, जिस आजमाइश में डालता गया, वो कहती रही ओके सद्दकत सद्दकत, ठीक है ठीक है। एक कुमारी लड़की को प्रेग्नेंट किया गया, केले में डिलीवरी की मुश्किलात में डाला गया, फिर न्यू बॉर्न बेबी को पकड़कर बिरादरी के सामने खड़ा किया गया, कहती कि अल्लाह ठीक है, कोई हाय वाय नहीं, को वावीला नहीं, सद्दकत भी कली माती रबी, यानी जो रब कहता गया वो मानती गई। इस वक्त मैं और आप क्या पढ़ रहे हैं? कलाम अल्लाह नहीं पढ़ रहे? तो यही कली माती रबी है। जिसने अल्लाह की बात माननी है ना, वो कुरान को पढ़ के यही कहेगा कि अल्लाह सद्दक था, अल्लाह तूने सच कहा, अल्लाह तूने सच कहा। यहां बैठ के जुबान से कहेगा और इस कमरे से निकलकर घर जाने के रास्ते से लेकर वापस आने तक अमल से कहेगा, अल्लाह तस्दीक करती हूँ जो पढ़ा है। और वह कुतुबी ही, और उसकी किताबों की। वह कानत मिनल कानतीन, और वो इतात गुजार लोगों में से थी। लिहाजा इस औरत को अल्लाह ने मिसाल बनाकर पेश कर दिया। असल में तो यहूद के लगाए इल्जाम की यहाँ अल्लाह ताला ने तरदीद की है कि नौजबिला हजरत ईसा की पैदाइश किसी गुनाह का नतीजा थी। दूसरी बात है कि हजरत मरियम की पाकी बयान की गई, और हम सब के लिए इसमें एक रोल मॉडल क्या है कि हम अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान को बचाना है, और जब ये काम कर लें तो बहुत फायदा होता है। हजरत अबू मूसा अशरी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मर्दों में बहुत से कामिल और मुकम्मल मर्द गुजरे हैं, मगर औरतों में सिर्फ आसिया जो फिरौन की बीवी और मरियम जो इमरान की बेटी हैं, ये कामिल हुई। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि खदीजा रजी अल्लाह तआला बीनी में, और एक रिवायत में आता है कि आयशा को तो औरतों पर वो खूबी हासिल है जो खानों में सरीद के खाने को हासिल है, यानी गोश्त का एक सालन जो अरबों में बहुत ही पसंदीदा समझा जाता है, उसकी बात है। तो ये थी सूरह तहरीम। मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी को बैठे हुए एक मिनट के लिए भी एहसास हुआ होगा कि आप किताब में से कुछ पढ़ रहे हैं। घरेलू जिंदगी, औरत और मर्द, घर, गृहस्थी, और उसमें आप अगर खुलासा कर लें तो बीवी बच्चों को भी जहन्नुम से बचाना है और खुद भी बचाना है। साथ रहकर बच सकते हैं तो साथ रहें, और साथ रहने में अपना भी दीन बदल रहा है, दूसरों का भी बदल रहा है, तो फिर हजरत आसिया को मिसाल बना लीजिए। और बच्चों की जहन्नुम, उससे बचना, उसकी फिक्र करना, ये जब वो बिगड़ जाए उस वक्त नहीं है, उससे पहले का काम है। और तरबियत लम्हा लम्हा होती है, वक्त के साथ होती है। अभी बच्चा आपके पेट में है, अभी आपकी ज्यादा सुनेगा, अभी कह लें, बाद में कहेंगी तो बोलना पड़ेगा। आप इमेजिन करें ना, अब आप सिस्टर्स अपने बच्चों से बात करती हैं तो बोलती हैं तो बात करती हैं ना, तो जब ये आपके पेट में थे तो बोलती तो नहीं थी, आप सोचती थी तो सुनते थे ना। जरा सा बच्चा बड़ा होता है तो फिर माँ को और भी ऊंची बोलना पड़ता है, और जब भागने की उम्र में आते हैं तो माँ को चीखना पड़ता है। तो तरबियत का अमल जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर आएगी। अब आप अपना इनपुट दीजिए कि आपको इस सूरत ने क्या दिया।
मुझे कल हमने सूरह तलाक पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसे कि कल हम गए थे वो इस्लामिक लॉ से ज्यादा रिलेटेड थी, ठीक है घर के साथ उसका था, लेकिन मुझे सूरह तवाबन और फिर उसके बाद सूरह तहरीम मुझे बहुत ज्यादा आपस में जैसे कहते हैं ना इंटरमिंगल लग रही है, कि मुझे लगता है कि सूरह तवाबन भी इज इक्वल टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया उसको आपने अपनी लाइफ में किस तरह इंप्लीमेंट करना है और किस तरह आपने डूज और डोंट्स के ऊपर रहना है, हदूद में रहना, लिमिट्स में रहना। और सूरह तहरीम में भी मुझे ये लगता है कि इसमें अल्लाह ताला ने, ये नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ थी, हम लोगों की भी पर्सनल लाइफ जो होती है हम भी चाहते हैं कि पब्लिक में ना आए, लेकिन समटाइम हम भी अपनी कुछ चीजें पब्लिक में लाते हैं सिर्फ इसलिए कि बेनिफिट। लाइक मैं अगर अपनी कोई मिसाल दूंगी तो उससे मेरा मकसद खुद नुमाई या मेरा उससे मकसद अपने घर की बुराई, मेरे बच्चों की बुराई नहीं होगा, समटाइम ये भी होगा कि मैं दूसरे लोगों तक वो चीज कन्वे करूं कि शायद उससे वो अलर्ट हो जाए, उनके लिए जो अलार्मिंग चीज होती है। तो मुझे सूरह तवाबुन और सूरह तहरीम दोनों में ऐसे लगा है कि डूज एंड डोंट्स के ऊपर काफी ध्यान देना है, लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान देना है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अपील।
बस इसमें एक छोटी सी बात है, तहरीम नहीं तहरीम, ता की जबर के साथ, ठीक है जी। इधर से जी आपने क्या सीखा?
मैंने जो इसमें से सीखा वो ये है कि इसमें हामद का मुकाम बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हामद को औरत से एक दर्जा ज्यादा दिया है, उनकी अतायत करनी चाहिए, और नेक औरत को बयान किया गया है कि उसमें क्या सिफात होनी चाहिए
जी। यानी आपको फीलिंग्स आएंगे हस्बैंड के साथ, यानी मोर रिस्पेक्ट का मामला करना है इंशाल्लाह ताला। आज आप यहाँ बैठ के सुन रही हैं, पहले आप घर से सुनती हैं, कोई डिफरेंस फील हुआ? फर्क होता है ना, माहौल का एक असर होता है। आज इन सब ने आपकी मदद की है ना सीखने में, राइट जी। कोई बात जो आपके जहन में आज के सबक से?
जिम्मेदारी जो घर के सारे मामला,
बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। देखिए जब हम कहते शादी 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 हो शादी हो, शादी के साथ जिम्मेदारियां, फिर कहते बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे के साथ जिम्मेदारियां, फिर कहते बच्चों की शादियां हो, बच्चों के बच्चे हो, फिर और जिम्मेदारियां। अगर अल्लाह ने आपको इससे फारिग रखा है तो खुशियां मनाएं, मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने आसानी चाहिए जी। आपने क्या सीखा?
मुझे वही कि जैसे अल्लाह ताला ने मर्द को तमाम कहा है, हमें हसीयत को मानना चाहिए और उसके साथ मिलकर फिर अपने बच्चों की जैसे शादी और फिर अपने अपने बच्चों को आग से बचाने की वो सारी तस्वीरें जो अल्लाह ताला हमें इस कुरान में बता रहा है। दूसरी मुझे बहुत अच्छी लगी तौबा के लोग, कि हम लोग नागार है, इंसान है, गलतियां होती हैं, जब भी तौबा करें कोई गलती हो तो वो तौबा तो नसूह
जी, तौबतुन नसूहा, और मर्द की कवामियत को समझना इंशाल्लाह ताला में जी।
रास रखने की बात है, ये बहुत ज्यादा आम बात करते हैं भी
जी,
की बात बाकी
पहुंचा जी, राजों की हिफाजत किसी की भी। देखिए यहाँ स्नैरियो हस्बैंड था, किसी का भी, लोगों को आपके ऊपर 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उसकी बात एक्सपोज नहीं करेंगे। ये लिखती हैं कि कुछ मर्द आपकी ताबेदारी को आपकी बेवकूफी और कमजोरी समझते हैं, उसका नजायज फायदा उठाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, कोई आपको बेवकूफ समझता है तो समझने दीजिए, आप बेवकूफ बन के उसको बेवकूफ बनाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा। एक होती है खिदमत और रिस्पेक्ट, और एक होती है बेवकूफी, ये आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप लिमिट्स में रहते हुए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपने शौहर की बात मानते हैं, और जहां वो गलत करें फिर उनको पता होना चाहिए कि ये नहीं आगे खामोश रहेंगे, लेकिन अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए। गलत ना माने कभी शौहर आपको बेवकूफ नहीं समझेंगे। एक जुमला बोलती हूँ, मर्द हमेशा उन बीवियों को बेवकूफ समझते हैं जो उनके लिए हर अच्छी बुरी बात को मान लेती हैं, पहले खुश होते हैं बाद में कहते हैं बेवकूफ थी, गलत बात भी मान गई। ठीक बात उनकी मानते जाइए, इंशाल्लाह वो आपसे नाराज नहीं होंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين